निक और प्रियल काफी देर तक वहां मौजूद डॉक्यूमेंट्स को पढ़ते रहे, लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिला। अचानक निक का ध्यान प्रियल की तरफ गया, जो एक कोने में बैठकर एक फाइल को पढ़ते हुए रो रही थी। निक ने उसे रोते हुए देखकर सोचा, मैंने इसे ऐसा भी कुछ नहीं कहा जिस वजह से ये रोने लग जाए। पिछली बार मैंने गुस्से में इसका हाथ मरोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैंने खुद पर पूरा काबू किया और इसके हाथ को बहुत हल्के से पकड़ा था, फिर ये रो क्यों रही है? अब अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो गुस्सा तो आएगा ही ना। ये समझती ही नहीं है मैं ये सब इसकी भलाई के लिए करता हूँ, इससे प्यार करता हूँ, तभी इसे खोने से डर लगता है। निक प्रियल को चुप करवाने के लिए उसके पास गया। निक को अपने पास देखकर प्रियल ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को पीछे छुपाने की कोशिश की, लेकिन निक ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे, दिखाओ मुझे, निक ने हैरानी से कहा। प्रियल ने अपने आंसुओं को पोंछा और उस फाइल को बंद करके बोला, कुछ नहीं है। निक ने प्रियल के हाथों से वो फाइल छीन ली और वहीं उसके पास बैठकर उसे पढ़ने लगा। उस फाइल में एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी की सभी डिटेल्स थी। जब से वो एजेंसी बनी थी तब से लेकर आज तक उसके सारे प्रोजेक्ट के बारे में भी वहां लिखा हुआ था, और साथ ही उनके बिजनेस ग्रो करने के लिए किए गए हर एक प्लान के बारे में उस फाइल में था। उसे पढ़ते हुए निक सन रह गया और वो उसे थोड़ा जोर से पढ़ते हुए बोला, ये एजेंसी खुद के फायदे के लिए जगह जगह ब्लास्ट करवाती है ताकि लोग इन्हें हायर करें। कोई अपने फायदे के लिए इतना कैसे गिर सकता है? मिस्टर दत्ता भी इन सब में इन्वॉल्व हैं। यहाँ इनके अब तक करवाए हुए सभी ब्लास्ट के बारे में लिखा हुआ है, जिनमें न जाने कितने मासूम लोगों की मौत हो गई होगी। निक उस लिस्ट को पढ़ रहा था तभी उसकी आंखों में भी आंसू आने लगे और वो जोर से चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निक उसे कुछ नहीं बता रहा था, बस जोर जोर से रोए जा रहा था। प्रियल भी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे क्या हो गया। निक, प्लीज आप खुद को संभालिए, अगर आपकी आवाज किसी ने सुन ली तो हम दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। प्रियल, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। लेकिन हुआ क्या है, आपको एली की मौत से जुड़ा कुछ मिला है? प्रियल ने संक पकाते हुए पूछा। सिर्फ एली ही नहीं, मुझे मॉम की मौत से जुड़ा हुआ भी बहुत कुछ मिला है। तुम्हें पता है प्रियल, उनकी भी मौत इसी तरह की किसी ब्लास्ट में हुई थी। पहले हमें लगता था कि ये टेररिस्ट का काम होगा, लेकिन वो ब्लास्ट भी इसी एजेंसी ने करवाया था। प्रियल, मेरी मॉम की भी जान उन्हीं ने ली है। पहले मुझे लगता था कि मिस्टर दत्ता सिर्फ मेरी एली की मौत के जिम्मेदार हैं, लेकिन मेरी मॉम की मौत भी उन्हीं की वजह से हुई थी। न जाने कितने मासूमों की जान उन्होंने ली होगी, बोलते हुए निक सुबकने लगा। उसकी बात सुनकर प्रियल नजरें झुकाकर बैठ गई। मिस्टर दत्ता से जुड़े हुए होने की वजह से आज उसे निक के सामने शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। चंद पैसों के लिए कोई इतना गिर भी कैसे सकता है? निक लगातार रोए जा रहा था। आप संभालिए खुद को, अब तो आपको उनके खिलाफ सबूत भी मिल चुके हैं, आप उन्हें सजा दिला सकते हैं। प्लीज, इस वक्त आपको खुद को संभालना होगा, हम काफी देर से यहाँ पर बंद हैं, अगर कोई आ गया तो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है, मैं ये फाइल लेकर यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन हम बाहर कहाँ से निकलेंगे? निक वहां से खड़ा होकर बोला। मिस्टर दत्ता ने जाने से पहले दरवाजा बंद कर दिया था। मैंने पहले ही इस कमरे की स्पेयर की बनवा ली थी। प्रियल ने अपनी जीन्स की पॉकेट से कुछ चाबियां निकाली और उस कमरे को खोला। दरवाजा खुलते ही निक ने सामने की अलमारी को हटाया और वापस उस जगह को वैसा ही कर दिया जैसे वहां कोई आया ही ना हो। बाहर आकर निक ने एक शब्द भी नहीं बोला और वहां से सीधा चला गया। उसके जाने के बाद प्रियल ने सोचा, हे भगवान, इस हालत में निक खुद को कैसे संभालेंगे? मैं तो उनके पीछे भी नहीं जा सकती। ऐसा करती हूँ, रॉन और जीनी को कॉल करके सब कुछ बता देती हूँ, वो दोनों उनके साथ होंगे तो उन्हें संभाल लेंगे। प्रियल ने जीनी को कॉल करके सब कुछ बता दिया। जीनी रॉन के साथ उसके सीक्रेट हाउस जाने के लिए निकली। वे दोनों अच्छे से जानते थे कि निक जब अकेला महसूस करता था तो अक्सर वहीं जाया करता था। निक जैसे तैसे अपने घर पर पहुंचा। जब से उसे अपनी मॉम की मौत की असली वजह का पता चला था, वो बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहा था। घर पर आकर निक ने उस फाइल को फाड़ दिया और अपनी मॉम की फोटो के सामने जाकर बैठ गया। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्यों उन्होंने ऐसा किया? कितने बड़े अनाथ हुए होंगे मेरी तरह, कितनों के घर टूटे होंगे, उन्होंने आपको मुझसे छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। एली भी मुझसे दूर चली गई। निक वहां बैठकर रो रहा था कि तभी रॉन और जीनी वहां पहुंचे। उन्हें वहां देखते ही निक रॉन के गले लगा गया। मेरे साथ ही क्यों, मैंने उनका क्या बिगाड़ा था जो उन्होंने मेरी मॉम को और फिर मेरी एली को मुझसे छीन लिया? निक रोते हुए बोला, इसमें किसी की कोई गलती नहीं थी, ना तेरी ना ही किसी और की। बस कुछ लोग अपने लालच के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, रॉन ने गंभीरता से जवाब दिया। निक ने कहा, दत्ता ने मेरी मॉम को भी मार डाला, मेरी एली के साथ साथ मेरी मॉम को भी छीन लिया,
ना मॉम जाती, ना मैं और एली स्पेशल फोर्स ज्वाइन करने की सोचते, और ना ही इन सब में एली की मौत होती। उसने मेरी एली को मुझसे छीन लिया, मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया। निक की तबीयत बिगड़ने लगी थी और वो किसी दूसरी दुनिया में खोने लगा था। ऐसा अक्सर उसके साथ होता था, तब जब वो बहुत ज्यादा दुखी होता था। उसे पैनिक अटैक्स आने लगते थे। रॉन, मुझे नहीं लगता निक की हालत इस वक्त ठीक है। उसे आराम की सख्त जरूरत है। अगर वो इसी तरह रोता रहा तो उसकी हालत बिगड़ सकती है। ऐसा पहले भी हुआ है, जीनी ने कहा। जीनी, यहाँ पर निक की मेडिसिन होंगी, तुम लेकर आओ, मैं इसे जैसे तैसे समझा कर दवाइयाँ देता हूँ। रॉन की कहते ही जीनी दौड़कर गई और निक के लिए दवाइयाँ लेकर आई। वो रोते हुए बार बार एक ही बात दोहराए जा रहा था, मिस्टर दत्ता की वजह से उसकी मॉम और एली की मौत हो गई। जीनी ने उसे दवाई देते हुए कहा, खुद को संभालो निक, अगर तुम इसी तरह रोते रहे तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। निक ने जवाब दिया, मुझे नहीं जीना। हम इस बारे में सुबह बात करते हैं, जीनी ने निक को दवाइयाँ दी। मेडिसिन लेने की थोड़ी देर बाद ही निक को नींद आ गई। उसका हाल रखने के लिए जीनी और रॉन वहीं उसके पास बैठ गए। रॉन ने सारी बात का पता लगाने के लिए निक की भाड़ी हुई फाइल को उठाया और हर एक पॉइंट को गौर से पढ़ने लगा। दूसरी तरफ निक के जाने के बाद अब तक प्रियल को उसकी कोई खबर नहीं मिली थी। जिस तरह से वो रोते हुए वहां से गया था, प्रियल को नींद नहीं आ रही थी और वो परेशान होकर इधर उधर टहल रही थी। प्रियल ने बैठते हुए खुद से कहा, प्रियल, तुझे भी क्या जरूरत थी डिटेक्टिव बनने की, सब बिगाड़ कर रख दिया तूने। हे भगवान, बस निक ठीक हो, मैंने उन्हें पहले कभी ऐसे टूटते हुए नहीं देखा। उन्हें कुछ हो तो नहीं जाएगा ना, मैं तो कॉल करके भी नहीं पूछ सकती। क्या पता अब तक वो उसी हालत में होंगे तो, या फिर कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहे होंगे तो। वो तो पहले ही मुझसे गुस्सा थे, ऐसे में मैंने उन्हें कॉल करके डिस्टर्ब किया तो और नाराज हो जाएंगे। सोचते हुए प्रियल वहीं पर बैठे बैठे सो गई। सुबह निक की आंख खुली तो उसने रॉन और जीनी को देखा। वो वहीं पास काउच पर बैठे थे, दोनों कॉफी पी रहे थे। निक उठकर बैठा और बोला, तुम लोग पूरी रात यहीं पर बैठे थे? रॉन ने हां में सिर हिलाया। निक कुछ देर चुपचाप बैठा रहा। जीनी ने वहां मौजूद चुप्पी को तोड़ते हुए कहा, कॉफी चाहिए? हाँ थैंक्स कि तुम दोनों,
जीनी ने उसकी बात काटकर बीच में बोला, अब इसमें थैंक्स वाली कौन सी बात हो गई? तुम ठीक हो ना अब? रॉन ने पूछा। निक ने सिर पकड़कर जवाब दिया, बस थोड़ा सा सरदर्द हो रहा है, कॉफी पीने के बाद ठीक हो जाएगा। थोड़ी ही देर में जीनी निक के लिए कॉफी लेकर आ गई। कॉफी पीने के बाद और थोड़ी देर हल्की फुल्की बात करने के बाद रॉन ने कहा, अब जब तुम मुझे ठीक लग रहे हो तो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? निक ने हैरानी से पूछा। रॉन ने अपने पास पड़ी फाइल को उठाया और उसे दिखाते हुए बोला, निक, ये वही फाइल है जो कल तुम्हें दत्ता के यहाँ मिली थी। कल गुस्से में तुमने ये ठीक से पढ़ी नहीं, बस आधी अधूरी डिटेल्स पढ़ी और अपने होश खो दिए। इस फाइल के नीचे एजेंसी के हेड के साइन है, इनमें दत्ता के साथ एक और इंसान का नाम भी है। निक ने उदास होकर बोला, क्या फर्क पड़ता है, मेरी मॉम तो नहीं है ना मेरे पास, और ना एली। लीव एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच, जो तुम हर हाल में मेरे साथ रहते हो। जीनी ने कहा, तब तो थैंक्स तुम्हें प्रियल को बोलना पड़ेगा, उसी ने भेजा था हमें यहाँ। और हाँ, लीव कहने से कुछ नहीं होगा, इन सब में जो दूसरा आदमी शामिल है उसके बारे में हम पता लगाकर उसे उसके किए की सजा दिलवानी होगी। रॉन ने जीनी की बात को पूरा किया। उसके बारे में तो मैं पता लगा ही लूंगा, लेकिन प्रियल, कल दत्ता के पीछे जाने के चक्कर में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने उसके लिए कितनी अरेंजमेंट्स की थी, कितना कुछ सोचा था। सोचा था इतने दिनों के बाद मैं उसे अपने दिल की बात बता दूंगा। प्रियल का नाम लेते ही निक को कल रात की सारी बात याद आ गई। रॉन बोला, बर्बाद नहीं किया निक, उसने तुम्हें सबूत दिए हैं, तुम्हें तो थैंक्स बोलना चाहिए उसे। हम दत्ता के सीक्रेट रूम तक कभी नहीं जा पाते और ना ही ये पता लगा पाते कि उसके साथ कोई और आदमी भी हो सकता है। हम इतने सालों से उसके पीछे हैं, लेकिन कभी इतना ठोस सबूत नहीं जुटा पाए जितना कि एक ही रात में प्रियल ने हमें ला कर दिया। निक ने कहा, हाँ अब मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि इसमें एक एजेंट बनने के सारे गुण मौजूद हैं। फिलहाल के लिए थैंक्स नहीं, क्लास लगानी पड़ेगी उसकी, जो मेरे मना करने के बावजूद भी वो वहाँ गई। वो भी कल रात से परेशान हो रही होंगी, उसके काफ़ी सारे मैसेजेस आए हुए हैं, मैं उससे बात करके बता देती हूँ अब तुम ठीक हो। चलो छोड़ो, तुम बता देना तब जब तुम रोहन की शादी में जाओ, जीनी ने कहा। नहीं जीनी, अब मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, रोहन से बात करके उसको समझा दो। दत्ता ने जो किया था उसकी वजह से पहले मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत थी, अब तो पूरा सच पता चलने के बाद वो मेरे सामने आएगा तो पता नहीं मैं क्या कर दूंगा। शायद मैं अपने गुस्से पर अपना काबू ना रख पाऊं। एक बार के लिए दत्ता से दूर रहना ही सही रहेगा, निक ने मिस्टर दत्ता के घर जाने से साफ इनकार कर दिया। अच्छा, इस फाइल का क्या करना है? रॉन ने पूछा। एक बार के लिए इस फाइल को संभाल कर रख लो, इन्हें अच्छे से स्कैन कर लेंगे तो ये साइन किसके हैं ये भी पता चल जाएगा। वैसे कहना पड़ेगा, इस बार मेरी चैटरबॉक्स ने कमाल कर दिया, लेकिन अब पता नहीं मैं उसे ये कब बता पाऊंगा कि मैं उसे कितना चाहने लगा हूँ। जीनी ने कहा,
निक, तुमने कहा था तुम प्रियल के लिए कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स करवाई थी। प्रियल ना सही, कम से कम मुझे तो तुम वो सब दिखा ही सकते हो। निक ने कहा, यही होटल में ही सब कुछ रेडी करवाया था। पहले हम लोग ब्रेकफास्ट कर लें, उसके बाद दिखाता हूँ। जीनी ने हामी भरी। निक ने रॉन और जीनी के साथ ब्रेकफास्ट किया और फिर वो तीनों साथ पानी की किसी हॉल में पहुंचे।